आत्मसमर्पण। वृद्ध गणपति महासेनापति मिठोद्रस परिस्थिति की गुरुता अनुभव कर केंद्रस के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए बद्ध परिकर हुए। गणकोष और रंग सामग्री के आयोजन की व्यवस्था का कार्य उन्होंने महाश्रेष्ठी पृष्ठ को सौंपा और सैन्य संधान की आयोजना महासामंत यवन उक्रिस को। नवशिक्षित सैन्य लेकर टविसा तटवर्ती द्रुह पर्वत उपत्यकाओं में शत्रु से लोहा लेने के लिए उन्होंने पृथुसेन को नियुक्त किया और स्वयं प्रत्येक कार्य का ब्यौरे से निरीक्षण और निर्देशन करने लगे। नगर और प्रदेश की आंतरिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व उन्होंने महापंडित धर्मष्ट को सौंपा। नई व्यवस्था से जनसमाज का निरुत्साह और त्रास शीघ्र ही दूर हो गया और संग्राम का उत्साह उमड़ पड़ा। आत्मरक्षा के भाव से प्रेरित सैन्य दल स्वेच्छा से उमड़े चले आ रहे थे। शस्त्रों का निर्माण चतुर्गुण मात्रा में होने लगा। गणपति का वार्धक्य से शिथिल जर्जर शरीर असम पथों पर वेगवान रथ के झकझोले सहने में असमर्थ था। वे प्रातः मध्यान्ह संध्या किसी भी समय स्वीकारूढ़ होकर निरीक्षण कार्य करते हुए नगर और उपांत के किसी भी भाग में दिखाई दे जाते। पृथुसेन अपने चपल श्वेत अश्व की ग्रीवा वागुड़ा से दोहरी किए प्रायः उनके पार्श्व में दिखाई देता अथवा वह अश्वारोहियों के दल के साथ व्यग्रता से पथों और वीथियों में वानरों के समान द्रुत गति से निकल जाता। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी अश्वारोही और पदाती सेनाओं को व्यूह रचना और आक्रमण की शिक्षा देने में व्यस्त रहता। उन्हें जंगल युद्ध का अभ्यास कराने के लिए वह तीन तीन दिन और रात जंगलों तथा आपगा नदी के कछारों में पड़ा रहता। तात धर्मष्ट आर्य प्रबुद्ध शर्मा और धृति शर्मा से आदर पाकर भी पृथुसेन पंडित विष्णु शर्मा विनय शर्मा आदि की मौन विरोध भावना के कारण समय मिलने पर भी धर्मष्ट के प्रसाद में न जा पाता। पिता की अनुमति से उसने तात धर्मष्ट के सम्मुख अपनी प्रपौत्री के पानी के लिए भिक्षा मांगी। तात ने उत्तर दिया, वत्स, इस समय तुम एक महान कार्य का उत्तरदायित्व लिए हुए संपूर्ण मनोयोग में उसी में ध्यान दो। पुत्र, सभी प्रसंगों के लिए काल के अनुसार अवसर होता है। चिंता रूपी कलिका पल्लवों से अवरुद्ध दिव्या के हृदय पर पुष्प भी अपने पटलों को प्रस्फुटित ही नहीं कर पाया था कि वह दूसरी चिंता के आतप से कुम्हलाने लगा। पृथुसेन की प्रतीक्षा में उसे तीन चार दिन बीत जाते और वह उसे एक झलक ना देख पाते। पृथुसेन की खोज में वह मल्लिका और सुमित्रा के प्रसादों के चक्कर लगाती परंतु वह दिखाई न पड़ता। अधीर होकर वह पृष्ठ के प्रसाद में पहुंची। पृथुसेन की माता और श्रेष्ठी ने उसका सिर सूंघकर वात्सल्य से अंक में लेकर स्वागत किया किंतु पृथुसेन न मिला। होठों पर मुस्कान और हृदय में पीड़ा लेकर वह लौट आई और निराश हो एकांत में पड़ रही अपने शैथिल्य और विरक्त के लिए महादेवी से प्रताड़ना और उपालम भी सुनकर भी वह विवश थी। उत्तर में वह केवल अश्रु बहा सकती थी। पृथुसेन कभी कार्यभार से अवसर पाने पर वृद्धा दासी वापा द्वारा धर्मष्ट के प्रसाद में दिव्या को संदेश भेज देता। वे मल्लिका या वसुमित्रा के प्रसाद में, पुष्करणी के उपवन में अथवा पृष्ठ प्रसाद में कुछ समय के लिए एकांत में मिल पाते। दिव्या उद्रेक से अतिरेक से पृथुसेन के वक्ष में समा जाना चाहती। उसके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगते। उसे अंक में लेकर सांत्वना देने के प्रयत्न में पृथुसेन स्वयं विहल होकर दिव्या में आश्रय ढूंढने लगता। दिव्या उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर वर्जने के लिए वाद्य हो जाती। पृथुसेन निढाल और निराश हो जाता। उसकी वह मुद्रा दिव्या के लिए मर्मांतक पीड़ा का कारण बन जाती। पृथुसेन ने संयम की मुद्रा में दोनों बाहु वक्षस्थल पर बांधे परंतु अति विहल स्वर में कहा, शीघ्र ही मैं तो विषातत पर युद्ध में जा रहा हूं। यदि तुमने मुझे अंगीकार किया तो मेरी स्मृति में तुम्हारी वर्जना ही साथ जाएगी। यदि न लौटा संभवतः मेरा सब ही सागला। दिव्या उसके होठों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। संयम की यंत्रणा से अकुलाकर पृथुसेन ने आत्मकरुणा की व्यथा में वे कठोर शब्द कह दिए परंतु दिव्या के फूट फूट कर रो पड़ने से उसका हृदय अपनी कठोरता के लिए परिताप से गल गया। संयम की मुद्रा में वक्षस्थल पर बंधे उसके बाहु शिथिल हो गए। दिव्या को गूढ़ लिंगन में लेकर उसके केशों, अश्रुसिक्त नेत्रों और कपोल को चूमकर अपनी कठोरता के लिए क्षमा मांगकर वह उसे सांत्वना देने लगा। तब दिव्या उसकी अधीरता को आश्रय देने के लिए विहल हो उठी। दोनों के हृदय अपने को भूलकर एक दूसरे के लिए प्रवाहित हो उठे। दिव्या के दिन अवसाद और क्षोभ में बीत रहे थे। अपने दुख की बात सोचते समय उसे वैद्यवर अष्टवीर चीवुक के शब्द याद आ जाते, और सुख और दुख अन्योनाश्रित है। उनका अस्तित्व केवल विचार और अनुभूति के विश्वास में है। इच्छा ही सर्वावस्था में दुख का मूल है। एक इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा को जन्म देती है। वास्तविक सुख इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छा से निवृत्ति में। महाअष्टवीर के उपदेशों पर उसे झुंझलाहट होने लगती। वह स्वीकार न कर पाती कि पृथुसेन के धर्मस्थान से न्याय प्राप्त कर बलाधिकृत का पद पा लेने से संतोष न हुआ। कुछ दिन पूर्व उसकी कल्पना में इसके अतिरिक्त और कामना न थी। पृथुसेन के कौशल और व्यस्तता का प्रसंग सुनकर वह उत्साहित होती परंतु उसे समीप पाने के लिए दिव्या के प्राण और भी व्याकुल हो जाते। दिव्या अपनी धाता छाया की माँ को अम्मा पुकारती थी। सैसम में दिव्या की क्रीड़ा सखी और सवयस्क होने के अतिरिक्त छाया का यह ममता का अधिकार अपरिमित था। दिव्या से प्रयोजन निष्प्रयोजन निरंतर भर्सना सुनकर भी छाया के लिए उससे कठोरता की संभावना न थी। दिव्या के क्षुब्ध होने पर छाया उपेक्षित और निराद्रित होकर भी दिव्या के पार्श्व में बनी रहती। दिव्या के लिए भी छाया के अतिरिक्त दूसरा कोई सहयोगी नहीं था। इस समवयस का आत्मीय दासी से वह उसी प्रकार निसंकोच थी जैसे कोई अपने नित्य व्यवहार के वस्त्रों से होता है। छाया का प्रेमी, धर्मष्ट के प्रसाद का दास नायक बाहुल दासता से स्वतंत्र लाभ करने के लिए स्वेच्छा से सैनिक सेवा के लिए चला गया था। दिव्या की विरक्ति और शैथिल्य में छाया अपने छिपे दुख का आभास पाती। दोनों की दुख की अनुभूति में अंतर उतना ही था जितना उनकी दुख सहने और दुख प्रकट करने की क्षमता में थी। छाया दिव्या के पर्यंक अथवा विस्तर के समीप उसके पांव अथवा शरीर के किसी अंग पर हाथ धरे बैठी रहती और प्रासंगिक अप्रासंगिक वार्तालाप से उसकी चिंता भंग करने का उपाय करती। दिव्या के विवाह के लिए महादेवी की निरंतर चिंता, उस संबंध में कितने ही योग्य वरों का प्रसंग और तात के सम्मुख पृथुसेन की दिव्या के पानी के लिए प्रार्थना और तात के उत्तर पर पंडित विष्णु शर्मा तथा प्राय उदासीन भृगु शर्मा के कक्षों में प्रकट किए गए शोक का भी समाचार दिव्या को छाया से मिलता रहता। पृथुसेन के प्रति अपने परिवार के निरादर भाव से दिव्या का हृदय जल उठता। तात और संपूर्ण प्रसाद जान ले, आर्य पृथुसेन के अतिरिक्त मैं किसी से विवाह न करूंगी। आर्य पृथुसेन ने ही मेरी पानी के लिए तात के सम्मुख प्रार्थना नहीं की, मैं स्वयं यही चाहती हूँ, अन्य कुछ नहीं चाहती, यह सब जान ले। मेरे लिए किसी अन्य वर की संभावना नहीं, यह जानने पर ही तात आर्य की प्रार्थना पर उचित ध्यान देंगे। विवाह भी विलंब से नहीं, आर्य के युद्ध पर जाने से पूर्व ही करना चाहती हूँ। छाया के सम्मुख उसने सब कुछ निसंकोच कह डाला और सोचती रही कि छाया से अम्मा सुनेंगे और फिर सब सुनेंगे। हाँ, सब सुन ले। पितृव्य प्रबुद्ध की पत्नी आर्य तारा ने दिव्या को स्नेह से अंक में लेकर उपदेश दिया, वत्स्य अधीरता उचित नहीं। तात तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण तुम्हारी इच्छा का तिरस्कार नहीं कर सकते, परंतु संक्रमण काल में तुम्हारे विवाह में शीघ्रता का प्रभाव जन पर अनुकूल न होगा। इससे आर्य पृथुसेन के प्रति तात का न्याय पक्षपात का अवसाद ग्रहण कर लेगा। केंद्रस के सागल की ओर बढ़ते आने के समाचारों से उठी आशंका और आतंक की लहरें नगर के प्रसादों के अंतःपुरों तक पहुंचने लगी थी। पत्नी और दिव्या को आश्वासन देने के लिए आचार्य प्रबुद्ध शर्मा ने कहा, आशंका का कारण नहीं, सामंत ओक्रिस और पृथुसेन द्वारा सुनियोजित हमारी नई सेना नक्षत्रज्ञ विक्रम द्वारा निश्चित शुभ लग्न में एकादशी के चंद्रमा का दर्शन कर समर यात्रा करेगी। निश्चय ही युद्ध की गति उलट पलट जाएगी। बलात् धरकर भेजे गए युवा सैनिकों में आत्मरक्षा के लिए तत्पर सैनिकों में महान अंतर होता है। दिव्या ने सुना, चौथे दिवस मध्यरात्रि के पश्चात पृथुसेन सेना लेकर समर प्रस्थान करेगा। उसके हृदय में शूल धस गया, युद्ध उसने देखा ना था परंतु उस विषय में यथेष्ट सुना था। सहस्त्रों पुरुषों का अनेक मारक शस्त्र लेकर परस्पर प्रहार करना, रक्त की नदियां, सहस्त्रों हताहतों का चीत्कार, उनका भूमि पर बिछ जाना, ऐसे कार्य से न केवल भय आपत्ति की ही संभावना है। पृथुसेन अपने वेगवान अश्व पर उसी नरवेग में धसता चला जा रहा है। महादेवी के अनुशासन से अन्वयस्कता और शैथिल्य दूर कर रखने के लिए दिव्या को अपने हाथों से अनेक गृह कार्यों में योग देना होता। हाथ निर्दिष्ट कार्य में यंत्र की भांति लगे रहने पर भी उसकी कल्पना में युद्ध के दृश्य छाए रहते। उस विभीषिका में दुस्साहस से सरपट दौड़ते, ग्रीवा फैलाए, चंचल श्वेत अश्व पर उठी हुई भुजा से खड़क थामे पृथुसेन संकट की ओर वेग से झपट्टा दिखाई देता रहता। दुष्कल्पनाओं से दिव्या का शरीर सिहर उठता। छाया का प्रणयी दास नायक बाहुल स्वेच्छा से सैन्य सेवा ग्रहण कर स्वतंत्र नागरिक बनकर पृथुसेन की पराती सेना में चला गया था। छाया विरह से दुखित थी। दिव्या उसे समीप बैठा कर बाहुल के संबंध में वार्तालाप कर सांत्वना देने के प्रयत्न में स्वयं भी सांत्वना पाती। छाया ने तांत्रिक पंडित वैकुंठ से बाहुल की रक्षा के लिए कवच प्राप्त किया था। दिव्या ने भी स्वर्ण की एक अंगूठी तांत्रिक को भेंट कर महाशक्ति रक्षक कवच पृथुसेन के लिए प्राप्त किया। जैसे भी बन पड़ा, दिव्या तीनों दिन मल्लिका और सुमित्रा के प्रसादों, पुष्करणी के उपवन में और श्रेष्ठी प्रेष्ठ के प्रसाद में पृथुसेन की खोज में गई। पृथुसेन को कहीं न पाकर वह निराश लौट गई। आर्य धृति शर्मा से उसने सुना कि बलाधिकृत पृथुसेन अत्यंत व्यस्त है, दिन और रात्रि उनके अश्व की पीठ पर ही बीतते हैं। एक अश्व थक जाने पर वे दूसरा बदल लेते हैं, परंतु वे स्वयं नहीं थकते। दिव्या अधीर होकर सोचने लगी, क्या वह व्यस्तता में मेरे लिए कुछ भी छद नहीं निकाल सकते? यदि उन्हें ध्यान देना होता तो क्या वापा को ही न भेजते? बहु भी इसी योग्य, उनके अत्यंत शांत शरीर और चिंता से क्लांत मन को मैं कब कौन आश्रय और सांत्वना दी है। उनकी आकुलता को मैंने सदा अपनी कठोरता से कुंठित किया है। उस संघर्ष में यदि वे मुझे भुला देना चाहते तो मैं इसी योग्य। उनके नेत्र में आंसू छलक आते, आंसू बहाने का अधिकार न था। वह छाया की भांति उन्मुक्त होकर रो भी रह सकती थी। अश्रुपूर्ण कंठ में श्वास अवरोध अनुभव कर वह निश्चल रह जाती। उसकी कल्पना में प्रतिक्षण वही क्रम दिखाई देता, शांत क्लांत विहल पृथुसेन का उसके अलिंगन में विश्रांति और संतोष चाहना, उसकी वर्जना से कुंठित क्षुब्ध पृथुसेन का दुस्साहस से युद्ध की विहिष्का में झपट्टे चले आना, जहाँ से संभव है मेरा सौ ही सागल में लौटे। पृथुसेन का अवसाद से खिन्न कुंठित मुख उसकी दृष्टि के सम्मुख आ खड़ा होता। यह स्मृति दिव्या के मन और शरीर को खंड खंड कर देती। आशंका से त्रस्त दिव्या की कल्पना चरम विभीषिका की कल्पना करने लगती। उसे समर भूमि में चोटी से एरी टकरक से भीगा प्रतुषेर का शरीर अश्व से गिरता दिखाई दे रहे लगता। शोकग्रस्त सैन्य समूह से घिरा एक शव दिखाई दे रहे लगता। उसके साथ स्वयं उसकी अपनी मृत्यु भी दात के आस्थान में ज्ञान गोष्ठियों में सुने जीवन मृत्यु शरीर आत्मा और पुनर्जन्म के प्रसंग मस्तिष्क में जाग उठते वे दोनों पुनः जन्म लेकर अमर प्रणय में बढ़ेंगे। बौद्ध श्रवणों का वचन स्मरण हो आते मन की उग्र इच्छाएं और व्याकुलताएं ही मनुष्य को वे संस्कार है जो मृत्यु को पीड़ावय बना देती है। मृत्युशेर की विहल इच्छा और व्याकुलता अत्यंत उग्र सजीवता से उसकी कल्पना में जाग उठती। वह स्वयं विहल हो जाती। अब मेरा शरीर आर्य का है, मेरा मन आर्य का है, मेरी आत्मा आर्य की है, मैं उन्हें व्याकुल क्यों देखूं? आर्य जो चाहेंगे उनका है सर्वस्व, परंतु स्वर्ण यात्रा से पूर्व उन्हें पाऊं कहां? केवल आज की संध्या ही तो शेष है। तांत्रिक वैकुंठ से प्राप्त महाशक्ति कवच निरंतर उसके हाथ में था। वह कवच अपने हाथ से पृथुसेन की भुजा पर बांधे बिना वह उसे समर में किस प्रकार जाने दे सकती थी? उसकी शरीर के प्रकट शैथिल्य के भीतर उसका प्रत्येक कृष्णायु अत्यंत तनी हुई वीणा के तारों की भांति चिंता की अंगुली के स्पर्श से निरंतर थरथरा रहा था। महाश्रेष्ठ प्रेष्ठ ने समर में पुत्र के मंगल और मद्र सेना की विजय कामना के उद्देश्य से प्रजापति के देवस्थान पर महायज्ञ की आयोजना की। पुण्य धातु चैत्य में उन्होंने 300 श्रमणों द्वारा परित्राण देवासेना के लिए तथागत के बिंब के सम्मुख सूत्रपाठ कराकर 1,000 भिक्षुओं को भिक्षा से सत्कार किया और यवन देवी जीएस के मंदिर में अश्व बलि का समारोह किया। छाया को सेवा में लेकर दिव्या तीनों स्थानों पर गई, परंतु पृथुसेन कहीं दिखाई ना दिया। उसने सुना आर्य निरंतर शिविर में व्यस्त है, वह निराश लौट गई, परंतु निराशा से शांत हो जाना संभव न था। धाता से अनुयाय कर उसे पुनः पृष्ठ प्रसाद में और दासगृह को पृथुसेन की खोज के लिए शिविर में भेजा। दिव्या के मन की अवस्था अत्यंत विक्षिप्त थी। एक ओर उसे प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण युग के समान दीर्घ जान पड़ा था और दूसरी ओर पश्चिम की ओर उतरते जाते सूरज की गति से अत्यंत तीव्र गति से समय हाथ से निकलता जाता जान पड़ रहा था। समाचार लेकर ढाठा पृष्ठ प्रसाद से लौट पाई और न दास गुह सैन्य शिविर से लौटा। सूर्य की किरणें केवल वृक्षों के सिरों पर शेष रह गई। विलीन होती किरणें दिव्या की आशा के साथ समेत लिए जा रही थी। किरणें वृक्षों की शिखरों पर से भी लोप हो गई। दिव्या सुदूर उत्तर में परंतु सागल से प्रसादों के कंधों पर सिर उठाए जान पड़ती पर्वत श्रेणी के शिखर पर सूर्य की आविष्ट किरणों की ओर दृष्टि लगाए निराशा से लड़ रही थी। सांत्वना उसके मन से उतनी ही दूर थी जितनी पर्वत श्रेणियां उसके हाथ से। ढाटा ने लौटकर निराशा से आर्य को पाने में असफलता का समाचार कहा। उसी समय सम्मुख पर्वत श्रेणी पर सूर्य का अवशेष प्रकाश विलीन हो गया। दिव्या क्षण पर्यंक पर क्षण पीटिका पर बैठती, क्षण कक्ष में क्षण बाहर उद्यान में ठहरती। उसे कहीं चैन न था। पल पल वह तृषा का अनुभव कर छाया से जल मांगती और जलपात्र सभी पर घूंट भरना भूल जाती। सहसा दासी माला ने कक्ष में आकर समाचार दिया, पृष्ठ प्रसाद की दासी वापा यज्ञ का प्रसाद लेकर महादेवी के कक्ष में उपस्थित हुई। दिव्या लेटी थी, उसने सहसा प्रश्न किया, क्या कब? इसी क्षण मंत्रे। दासी से उत्तर पाकर उसने अशोभन व्यग्रता के लिए संकोच से दिव्या पुनः लेट गई, परंतु उसकी दृष्टि द्वार की ओर से न हटी। दासी के चले जाने पर लेटे रहते न बन पड़ा, वह उठकर कक्ष में टहलने लगी। उत्सुकता का दमन करना असंभव हो जाने पर उसने पुकारा, छाया देख क्या दासी वापा लौट गई? उसी समय वृद्धा दासी ने दिव्या के कक्ष में प्रवेश किया। आयुष्मती कुमारी के लिए कल्याण कामना कर उसने देवता से आयुष्मती के दुख संताप अपने हीन वृद्ध शरीर पर देने की प्रार्थना की। समीप बैठकर वह यज्ञ के बृहत अनुष्ठान का वृतांत सुनाने लगी। उसकी दृष्टि समीप उत्सुकता से कान लगाए छाया की ओर बार बार जाती। दिव्या ने छाया को आदेश दिया, छाया भंडार गृह से वृद्धा बापा के लिए उपायन लाओ। छाया के चले जाने पर बापा ने रहस्य के स्वर में संदेश दिया, सूर्यास्त के 2 घड़ी पश्चात मल्लिका प्रसाद में। दिव्या के नेत्र ज्योतिर्मय हो गए, रत्नजटित अंगूठी उठाकर उसने बापा के हाथ में रख दी। उत्साह से उठ दिव्या उपेक्षित मलिन वस्त्र परिवर्तन कर प्रसाधन में लग गई। भावावेश के कारण निरंतर अधिक श्वेत आदेश प्रसाधन कठिन हो रहा था और उसके हाथ अटपटा जाते। सहायता के लिए प्रस्तुत छाया के प्रश्नों का उत्तर भी वह न दे पाती। उद्रेक से उसका स्वर अस्वाभाविक हो रहा था। उत्साह और उल्लास आकंठ उमंग आने के कारण शब्दों के लिए स्थान न था। वह आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रसाधन उस यात्रा का अनुष्ठान था। पृथुसेन मंत्र की रक्षार्थ विजय देवी को संतुष्ट करने के लिए आत्मसमर्पण का अर्घ्य लेकर श्रवण यात्रा के लिए प्रस्तुत था। उसके संकट और भय में उसकी अर्धांगनी बनने के लिए अपना अस्तित्व उसे सौंप कर उसके हृदय में क्षमा कर उसे साहस और सांत्वना देने के लिए दिव्या आत्मसमर्पण की विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत हुई। वही संसार में उसके सबसे अधिक अपना था। उस पर परिवार समाज और दिव्या का अपना अस्तित्व भी न्योछावर था। उसने छाया को रथ प्रस्तुत करने का आदेश देकर महाशक्ति का कवच हाथ में ले लिया। बलाधिकृत पृथुसेन के नेतृत्व में मद्र की पराती और अश्वाराही सेना को तविशा की ओर गए 1 मास बीत गया। अब दूसरे ही समाचार आने लगे। केंड्रस की गति रुक गई थी, उसकी दस्यु दल डार्व की ओर हटने लगी। इन समाचारों से संपूर्ण सागर नगरी को जितना उत्साह और स्वांतना हुई, उससे अधिक अकेली दिव्या को। वह आशा करने लगी लगभग एक और मास में आर्य विजयी होकर लौट आएंगे। वह कल्पना में पृथुसेन और अपने विवाह उत्सव के दृश्य देखने लगी। विजय के गर्व पृथुसेन की कल्याण कामना और शीघ्र दूर मिलने की आशा में उसका समय बीतने लगा। अन्वयस्कता और शैथिल्य होकर भी उसकी तृप्ति की गंभीरता आ गई। महादेवी संतोष अनुभव करती और युवक पृथुसेन के नगर से चले जाने के कारण कुमारी के चित्त की उद्विग्नता दूर हो गई। दूसरा मास बीतकर तीसरा आरंभ हो गया। केंद्रस की सेना परास्त होकर पीछे हटती जा रही थी और पृथुसेन उसका पीछा करता दार्व की सीमा में बढ़ता चला जा रहा था। गणराज्य की सीमा के विस्तार के समाचार से सागर के नागरिक उत्साहित हो रहे थे। दिव्या उस विजय में अपना भाग अनुभव कर गर्वित और संतुष्ट थी। उसकी गंभीरता बढ़ गई। पृथुसेन के लौट आने की उत्सुकता से उसका जीवन संबद्ध हो गया। वह नेत्र मुंडे स्मृति में पृथुसेन की स्वर्ण यात्रा की रात्रि का दृश्य देखती। उस रात्रि की अनुभूतियों से वह रोमांचित हो जाती। अपने अवसान को विजय में परिणत हो देख वह सफलता और अभिमान से पुलकित हो जाती। अपने शरीर में पृथुसेन की उपस्थिति अनुभव कर गर्व और उल्लास से गदगद होकर उसका हृदय उछलने लगता। पूर्णता की सीमा पर पहुंचकर वह उल्लास व्याकुलता में परिवर्तित हो जाता कि अब आर्य का तुरंत लौट आना आवश्यक है। उसका अधिक विलंब से लौटना चिंता का कारण हो जाएगा। चौथे मास के अंत में समाचार आया, पृथुसेन ने डार्व का आधा प्रदेश विजय कर लिया है। केंद्रस युद्ध में पृथुसेन के खड़ग प्रहार से धराशायी हुआ और पृथुसेन भी आहत हुआ। विजयी सेना डार्व से स्वर्ण रत्न और अश्व बहुमाल्य पदार्थों और दो सहस्त्र बलिष्ठ दास और सुंदर दासियों का समूह लिए लौट रही है। समाचार सुनकर दिव्या ने अपना हृदय दोनों हाथों से संभाला। नेत्रों का जल प्रवाह रोकने में असमर्थ होकर वह दुकुल ओढ़े पर्यक पर लेती रही। किसी दूसरे के न जानने और अनुभव न करने पर भी अपने शरीर में आते परिवर्तन से संकोच अनुभव कर वह अस्वस्थता का बहाना कर प्राय कच्छ से बाहर न निकलती। उसके प्राण प्रतिक्षण पृथुसेन को पुकारते रहते, आर्य अपनी दिव्या और उसके शरीर में सौंपे अपने अंश की सुध लेने के लिए शीघ्र आओ।